नमस्कार भारत, आज है 8 जून दिन गुरुवार। स्वीकार कीजिए संदीप सोनी का नमस्कार। ब्रिटेन में संसदीय चुनाव के लिए आज होगा मतदान, चुना जाएगा अगला प्रधानमंत्री।
ब्रिटेन में भारतीय मूल का समुदाय है, उसकी अच्छी खासी संख्या है, 10 लाख के करीब लोग रहते हैं। करीब करीब 55 से 56 उम्मीदवार जो है वो जो उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है।
मध्य प्रदेश में किसानों का प्रदर्शन तेज हुआ, कई जगह हिंसा की घटनाएं, पुलिस ने माना किसानों पर चलाई गोलियां।
नया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोशिश कर रहे हैं मालवा के उस इलाके में, मंदसौर और नीमच के आसपास, तो ये भी लोगों का विरोध था पर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको नहीं सुना।
चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का मुकाबला आज श्रीलंका से,
बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली मैच जीत गई है इंडिया और अगर दूसरी मैच भी जीतती है तो फिर सेमीफाइनल में जगह पक्की हो जाती है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। ब्रिटेन में आज आम चुनावों में लाखों लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। डाक वोटिंग के जरिए कुछ लोग वोट डाल भी चुके हैं। ज़्यादातर मतदान केंद्र स्कूल और सामुदायिक केंद्रों में बनाए गए हैं, लेकिन ब्रिटेन के चुनाव के इतिहास में पब, धुलाई केंद्रों और स्कूल बसों को भी मतदान केंद्र बनाया जा चुका है। ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत के लिए 326 सीटें जीतना ज़रूरी है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने तेहरान में बुधवार को हुए चरमपंथी हमले का आरोप सऊदी अरब और अमेरिका पर लगाया है। सऊदी अरब ने आरोपों से इनकार किया है, वहीं ट्रंप ने अपनी संवेदनाएं जताते हुए चेताया कि आतंकवाद को पोसने वाले देश खुद उसके शिकार हो सकते हैं। बुधवार को ईरानी संसद के भीतर और वहाँ के पूर्व धार्मिक नेता आयतुल्लाह खमेनी की बाजार पर हुई गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हो गई थी। हमले की जिम्मेदारी कथित इस्लामिक स्टेट ने ली थी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल खमेनी ने कहा, और बिल्कुल ये घटनाएं दिखाती हैं कि अगर इस्लामिक गणतंत्र इन साजिशों के केंद्रों को जवाब नहीं देता तो हमें उन लोगों से ऐसी और परेशानियां होंगी जो हमारे ही यहाँ मौजूद हैं। ये थे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल खमेनी के शब्द। कतर संकट के बीच अमरीकी राष्ट्रपति ने कतर के अमीर से चरमपंथियों की फंडिंग रोकने के लिए क्षेत्र में सभी देशों के मिलकर काम करने की अहमियत पर बात की है। उधर कतर ने कहा है कि शुरुआती जांच के मुताबिक कतर के अमीर का झूठा बयान इंटरनेट पर प्रसारित करने वाली समाचार एजेंसी हैक कर ली गई थी। अरब देशों के कतर से संबंध तोड़ने की एक वजह अमीर का वह बयान भी था। उधर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अनवर गार्गश ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर वो कतर के खिलाफ और कड़े कदम उठाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी कार्रवाई का कतर में फैसले लेने वालों के बीच कुछ संदेश जाए, वे आएं और देखें कि उनके समग्र हित अपने पड़ोसियों को कमज़ोर करने में नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर काम करने में हैं। ये थे संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अनवर गार्गश के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। निष्कासित एफबीआई निदेशक जेम्स कोमी ने पुष्टि की है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन के रूस संबंधों की जाँच रोकने के लिए कहा था। जेम्स कोमी ने राष्ट्रपति से हुई अपनी 5 बातचीतों के ब्यौरे अमरीकी सीनेट की खुफिया समिति को सौंपे हैं, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कोमी से वफादारी की अपेक्षा कर रहे हैं जबकि कोमी अपनी भूमिका को निष्पक्ष बता रहे हैं। भारत में चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। 17 जुलाई को मतदान होगा और नतीजे 20 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। 28 जून को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई की मध्यरात्रि को ख़त्म हो रहा है। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने अपने पश्चिमी किनारे पर कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी हैं। ये उत्तर कोरिया की तरफ से किया गया ताज़ा परीक्षण है। उत्तर कोरिया लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियों का उल्लंघन करते हुए मिसाइल परीक्षण कर रहा है। पिछले हफ्ते ही उस पर पाबंदियाँ और कड़ी की गई हैं। उधर पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी उम्मीदें बनाए रखी हैं। बारिश के खलल के बीच बर्मिंघम के मैदान पर खेले गए डे नाइट मुकाबले में उसने 19 रनों से श्रीलंका को हराया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। जैसा कि आपने अभी अभी समाचारों में सुना, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का मुकाबला आज श्रीलंका से होगा। मैच रोमांचक होगा, लेकिन आसमान में बादल होने की वजह से मैच में खलल भी पड़ सकता है। आएंगे इस खबर पर और ये भी बताएंगे आपको कि मध्य प्रदेश में मंदसौर में जो किसान मारे गए, पुलिस ने पहली बार ये माना है कि गोलीबारी में पुलिस का हाथ था। लेकिन पहले कार्यक्रम की शुरुआत ब्रिटेन से, जहां आज संसदीय चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव तय करेंगे ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या टेरिजा मे को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा या ब्रिटेन को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा, ये सब कुछ निर्भर होगा आज होने वाले मतदान पर। बहरहाल, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम आपको ब्रिटेन के चुनाव के अलग अलग पहलुओं के बारे में बता रहे हैं, और इसी कड़ी में कुछ सवाल बच गए थे जिनका जवाब जानने के लिए मैंने लंदन में मौजूद बीबीसी संवाददाता वंदना से अब से कुछ देर पहले बात की।
जी संदीप, यहाँ से बस चंद ही घंटों के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लंदन के समय की अगर बात करें तो सुबह सुबह 7 बजे और भारत के समय अनुसार करीब 11:30 बजे जो है मतदान शुरू हो जाएगा, और यहाँ के समय अनुसार रात करीब 10 बजे तक लोग लगातार अपना वोट डाल सकते हैं। करीब करीब 5 करोड़ लोग हैं जो वो रजिस्टर्ड हैं वोट करने के लिए, और 650 सीटें हैं, सांसद हैं जो चुने जाने हैं, और उसी के लिए ये पूरी रेस है जिसके लिए तमाम कैंपेनिंग अभी तक चलती आई है। और पिछली बार की बात करें तो करीब 67% मतदान हुआ था, और देखना होगा कि आज किस तरह का मतदान होता है।
ये बताइए वंदना कि भारत या भारतीय मूल के जो लोग हैं ब्रिटेन में रहते हैं, वो भी कुछ अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं इन चुनावों में?
जी बिल्कुल, यहाँ ब्रिटेन में भारतीय जो समुदाय है, भारतीय मूल का समुदाय है, उसकी अच्छी खासी संख्या है। करीब 10 लाख के करीब लोग रहते हैं, और करीब करीब 55 से 56 उम्मीदवार जो है वो प्रक्रिया में है, जो उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। पिछले जो चुनाव हुए थे 2015 में, उसमें 10 भारतीय मूल के जो सांसद है वो चुनकर आए थे, और इस बार भी 56 लोग मैदान में हैं जो भारतीय मूल के हैं।
ये बताइए वंदना कि जब चुनाव होते हैं तो महिलाओं का सवाल भी उठता है कि उनकी भागीदारी कितनी है, चाहे भारत की बात हो या किसी भी देश की बात हो। ब्रिटेन में जब आज ये मतदान होने जा रहा है तो इस चुनाव में कितनी महिलाएं, कितनी प्रतिशत महिलाएं चुनावी मैदान में हैं?
जी, इस बार अगर कुल उम्मीदवारों की बात करें तो करीब 3300 उम्मीदवार हैं, और महिलाओं का प्रतिशत जो है वो करीब करीब 30% है, जिसे कि पिछली बार से ज्यादा माना जा रहा है। पिछली बार कोई 26% महिलाएं जो कुल थी वो उम्मीदवार थी, और एक कम से कम एक सीट ऐसी है जहां से कह सकते हैं कि कोई पुरुष उम्मीदवार नहीं जीत सकता है, ग्लासगो, क्योंकि स्कॉटलैंड में है, क्योंकि वहां सारी जो उम्मीदवार हैं वो महिलाएं हैं। लेकिन ऐसी भी करीब 100 सीटें हैं जहां पे कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं है।
दुनिया को ये कब पता चल जाएगा कि ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन है? ये कब तक वोटिंग के बाद नतीजे आना शुरू हो जाएगा?
यहाँ के हिसाब से करीब 10 बजे जैसे ही जो प्रक्रिया खत्म होती है कि लोग वोट डाल के खत्म करते हैं, उसके तुरंत बाद जो है वो काउंटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ उस तरह से ईवीएम से नहीं होती है जैसे कि भारत में होता है, और सीट दर सीट उसके बाद काउंटिंग शुरू होती है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि पिछली बार जो पहला चुनाव था वो नतीजा था वो कम से कम 1 घंटे के भीतर एक तरह से आ गया था, बहुत ही स्पष्ट था। लेकिन पूरी स्थिति साफ होते होते, खासकर अगर मुकाबला कड़ा हो या ना हो, तो करीब करीब 12 घंटे लग जाते हैं। तो आप समझिए कि कल जब इसके बाद जब दोबारा लाइव आएंगे इस कार्यक्रम में नमस्कार भारत में, तो शायद स्थिति या रुझान साफ होने शुरू होंगे कि रुख किस तरफ है।
ब्रिटेन में संसदीय चुनाव के लिए आज होगा मतदान, चुना जाएगा अगला प्रधानमंत्री। ये थी वंदना, बीबीसी संवाददाता लंदन से।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
भारत में लगातार दूसरे तीसरे दिन किसानों का मुद्दा छाया हुआ है। मध्य प्रदेश के मंदसौर और अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, और इस मामले में पहली बार पुलिस ने यह माना है कि किसानों पर चली गोलियां पुलिस की बंदूक से ही निकली थीं। इसके साथ ही राज्य में राजनीति भी तेज हो गई है। भोपाल से शूर्य नियाजी की रिपोर्ट।
मंदसौर में फायरिंग के दौरान मारे गए 6 किसानों के मामले में आखिरकार प्रदेश पुलिस ने मान लिया है कि गोली पुलिस ने ही चलाई थी। आईजी लॉ एंड ऑर्डर मकरन देओस्कर ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने ही फायरिंग की थी। अभी तक सरकार कहती रही है कि गोली असामाजिक तत्वों द्वारा चलाई गई थी। वहीं मंदसौर के बाद अब हिंसा का दौर इंदौर देवास के करीब देखने को मिला, जहां कई बसों और ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने 10 और कंपनियों की मांग की है। इस मामले को लेकर अब राजनीति भी चरम पर है। भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने किसानों की जो वाजिब मांगे थी उन्हें पहले ही मान लिया था, लेकिन अब जो मामला चल रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी कहते हैं,
जब इस प्रकार से लोगों ने देखा कि किसानों का एक सेंटीमेंट निकल कर आ रहा है, तो कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस ने इसको एक्सप्लॉइट करना चाहा और उन्होंने इसमें हिंसा का प्रवेश कराया। जो लोग बसेस जला रहे हैं, थाने को जला रहे हैं, कलेक्टर्स को थप्पड़ मार रहे हैं और पैसेंजर बसेस को जला रहे हैं, आज आपने देखा होगा दिन भर। और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज कांग्रेस ने बंद कॉल किया था, तो दैट वॉज टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवमेंट विच इज वायलेंट ऑल्सो।
वहीं कांग्रेस का आरोप है कि जो स्थिति इस वक्त प्रदेश में है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा कहते हैं,
अचानक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आरएसएस से जुड़े हुए संगठन भारतीय किसान संघ उसने अपने लोगों को घुसपैठ कर दिया और षड्यंत्र पूर्वक किसानों के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। और दो दिन उनके साथ रहने के बाद भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री से समझौता कर लिया और कह दिया हम आंदोलन समाप्त करते हैं, हमारी सरकार ने मांगे मान ली और मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि अपनी सरकार ने मांगे मंजूर कर ली किसानों की। उसके बाद किसान उत्तेजित हुए हैं और उत्तेजित होने के बाद में जो किसानों ने किया है उसका पूरा दोष सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार है।
वहीं किसान संगठन भी ताजा हालात के लिए सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से किसानों के हितों की रक्षा करने में असफल रही है। उनका कहना है कि किसान कुछ भी नहीं चाहते, वो सिर्फ खेती में लगी अपनी लागत निकालना चाहते हैं। किसान यूनियन के संस्थापक केदार सिरोही कहते हैं,
आप देखिए गांव में अधिकतर यूथ आज बेरोजगार बैठा हुआ है। इस आंदोलन में आप देखिए पूरी जगह यूथ है, बुजुर्ग आपको कोई नहीं दिख रहा है। एक तो वो गांव में बेरोजगार बैठा हुआ है, दूसरी बात उसको गांव में उसकी फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, तो उसका गुस्सा फूट चुका है। और उसके बाद में जो प्रदेश सरकार का जो प्रशासनिक तबका है उसने कहीं भी किसानों के साथ अच्छे से बात नहीं की और न उनको समझने की कोशिश की। जहाँ देखा गया हो उसका ने लाठीचार्ज या गोली तक की बातें कर दी।
लेकिन मध्य प्रदेश में पहली बार किसानों का इतना उग्र आंदोलन देखा जा रहा है। किसानों द्वारा किए जा रहे हिंसक प्रदर्शन ने सभी को हैरान कर दिया है। इंदौर और देवास के नजदीक किसानों ने जहां जगह जगह गाड़ियों को आग के हवाले किया, वहीं उनके गुस्से का निशाना मंडी, दुकानें और पुलिस थाने भी बने। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
मंदसौर नीमच समेत मध्य प्रदेश में मालवा का इलाका खेती किसानी के लिहाज से बहुत समृद्ध माना जाता है। किसानों की समृद्धि यहाँ नजर भी आती है, तो फिर क्या वजह रही कि किसानों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा? यही समझने के लिए बीबीसी संवाददाता हरिता कांडपाल ने पीपल्स रिसर्च सोसाइटी से जुड़े योगेश दीवान से बात की।
देखिए मंदसौर और ये जो पूरा मालवा इलाका है वहाँ पर एक प्रचलित कहावत है कि पग पग रोटी पग पग नीर, मालवा धरती गहन गंभीर। तो यहाँ पर इतना ज्यादा प्रोटेक्शन भी होता था और लोग भी इतने शांत थे, और ये पूरा इलाका है जहाँ पर अफीम से लेकर के और कैश क्रॉप मतलब मिर्च लहसुन प्याज आलू और इस तरह के मसाले ये सब होते हैं उस इलाके में, पर इन सब को सपोर्ट प्राइस में नहीं लिया जाता। एक मुद्दा ये है अफीम को छोड़ के बाकी चीजों को। दूसरा मुद्दा ये था कि किसानों का जो अधिग्रहण का जो नया फंडा है जो स्टेट के हाथ में है, स्टेट ने कुछ नया कानून बनाया है पिछले साल में, और उसमें वो जमीन को लेने का उनका जो तरीका है वो इतना सरल कर दिया है कि किसान के हाथ से जमीन बहुत सरलता से जा रही। और ये नया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोशिश कर रहे हैं मालवा के उस इलाके में मंदसौर और नीमच के आसपास, तो ये भी लोगों का विरोध था। तो इसलिए लोगों ने अपनी तरीके से आंदोलन शुरू किया था और वो अपना ही माल सड़कों पर फेंक रहे थे, दूध फेंक रहे थे, फल फेंक रहे थे, प्याज फेंक रहे थे। तो उनका कोई इस तरह का हिंसा में उतरने का ना इतिहास है ना हिंसा से कोई तरीके से वो लड़ने वाले थे ना लड़ना चाहते थे, पर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको नहीं सुना।
और प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है उसने भी कुछ वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में चुनाव के वक्त, क्या वो पूरा कर पाई? और दूसरा कि इस इलाके में बीजेपी को काफी समर्थन मिलता रहा है।
जब 1925 में आरएसएस बनी है तब से मंदसौर और ये नीमच का जो इलाका है ये बड़ा आरएसएस का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ना जो मैनिफेस्टो था उसमें पहले जो बीजेपी 13 साल से यहाँ पर जो सपोर्ट प्राइस है कई चीजों की उनके अलावा उनको 50 रुपए या 100 रुपए बोनस देती थी, चाहे वो गेहूं हो या धान हो या दलहन हो, अभी उसमें उन्होंने बंद कर दिया। जबकि मध्य प्रदेश सरकार देना चाहती थी पर केंद्र ने उस पर रोक लगाई कि किसी भी तरह का बोनस आप एक्स्ट्रा नहीं देंगे, सपोर्ट प्राइस जो है वो दी जाएगी। और मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि हमने 0% लोन दिया है कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से, मुश्किल से 5% किसानों का कर्जा माफ किया है ये पिछले साल में, और बाकी जो कर्जा है वो वहां का वहां है। मध्य प्रदेश का कोऑपरेटिव बैंक है वो दिवालिया है, वैसे भी उनकी हालत बहुत खराब है, तो मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा ज्यादातर तो माफ हुआ ही नहीं है।
ये थे पीपल्स रिसर्च सोसाइटी से जुड़े योगेश दीवान, जो किसानों के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों पर रोशनी डाल रहे थे। नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ भारत में। वक्त हुआ है सुबह के 6:45 और आइए अब जानते हैं आज के अखबारों में क्या कुछ छपा है। कुलदीप तैयार हैं
जी। संदीप, सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में किसानों के प्रदर्शन की खबर को प्रमुखता से छापा गया है। उसमें ज़्यादातर अखबारों ने किसानों का आक्रोश और भड़कने और इस आंदोलन के और उग्र रूप लेने की बात लिखी है। नवभारत टाइम्स ने एक शीर्षक दिया है, किसानों का गुस्सा बढ़ा, मोदी चिंतित। चूंकि प्रधानमंत्री की तरफ से बयानों का भी इंतजार हो रहा है,
कृषि मंत्री की तरफ से भी
कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन चूंकि कल मोदी ने एक बैठक बुलाई थी उसके लिहाज से ये अनुमान लगाकर कि मोदी चिंतित हैं, इन्होंने ये शीर्षक दिया है। एक तस्वीर में हिंदुस्तान और अमर उजाला में देख पा रहा हूँ जिसमें देवास में एक नीले रंग की बस धू कर जलती दिखाई दे रही है। अमर उजाला ने ही पहले पन्ने पर इनसेट में ये खबर दी है कि महाराष्ट्र में भी किसानों के प्रदर्शन के 7 दिनों में 7 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। द हिंदू ने इसी खबर को इस शीर्षक से छापा है कि राजनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार से किसानों को भड़काने वालों पर और अस्थिरता फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात कही।
राजनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री,
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। दूसरी, ईरान में संसद भवन परिसर और खमेनी की मज़ार पर हमले की खबर भी ज़्यादातर अखबारों में पहले पन्ने पर है जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। इसमें तस्वीर को ज़्यादातर 3-4 अखबारों ने पहले पन्ने पर छापा है जिसमें एक बच्चे को खिड़की पर खड़े सुरक्षा अधिकारी की ओर नीचे से हाथ बढ़ाकर बढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ उस संसद भवन परिसर से सुरक्षित निकाले जाने के लिए। एक खबर इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर दी है कि कभी अमीरों की बीमारी कही जाने वाली मधुमेह यानी डायबिटीज़ अब शहरी गरीबों को भी अपनी चपेट में ले रही है, जो जाहिर है सामाजिक आर्थिक तौर पर कमज़ोर माने जाते हैं। तो कभी अमीरों की बीमारी मधुमेह कही जाती थी। एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने न मंदसौर को लीड बनाया है और न ईरान को, उन्होंने खबर दी है कि ब्याज दरों को लेकर RBI और सरकार के बीच तनाव अब सार्वजनिक हो गया है। तो वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अरविंद सुब्रमण्यन, उन्होंने कल मीडिया के सामने बड़ा नाराज़गी भरा बयान दिया था। हुआ ये था कि सरकार चाहती थी कि RBI ब्याज दरों में कटौती करे, लेकिन RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने रेपो रेट को स्थिर रखकर साफ कर दिया कि ब्याज दरों में कटौती नहीं की जाएगी।
कुलदीप, आपको ध्यान होगा इससे पहले RBI और वित्त मंत्रालय के बीच इस तरह के मतभेद की खबरें नोटबंदी के मामले में भी आई थी, जब नए नोट जारी किए गए थे और
रघुराम राजन को
पुराने नोट एकदम से बंद कर दिए गए थे 1500 के। बहुत शुक्रिया समाचार पत्रों की विस्तार से समीक्षा करने के लिए। और आइए अब कतर के मौजूदा संकट के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं दुनिया जहान में मोहनलाल शर्मा के साथ।
दुनिया जहान, तेल और गैस के अपार भंडार वाला अरब जगत का एक छोटा देश कतर। ये गैस के कुएं ही थे जिसके जरिए कतर ने इतनी दौलत कमाई कि वो दुनिया के सबसे रईस मुल्कों की सूची में शामिल हो गया। कतर की चर्चा उसकी संपदा, उसकी दौलत के चलते ही होती है, लेकिन खाड़ी देशों ने अब इसी कतर को अलग थलग कर दिया है। राजनयिक संबंध खत्म करने वाले देशों में है सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, यमन और लीबिया। इन देशों ने एक सुर में कतर पर आरोप लगाया कि वो क्षेत्र में कथित इस्लामिक स्टेट और चरमपंथ को बढ़ावा दे रहा है। सऊदी अरब के टीवी चैनल पर इस प्रतिबंध की घोषणा की गई।
सऊदी सरकार ने आतंकवाद और अतिवाद के खतरों से देश की रक्षा करने के लिए अपने संप्रभु अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कतर से अपने राजनयिक संबंध तोड़ने का फैसला किया है। वो कतर से हर तरह के संपर्क यानी जमीनी, हवाई और समुद्री संपर्क भी खत्म कर रही है।
उधर कतर ने इन चरमपंथ को बढ़ावा देने वाले आरोपों का खंडन किया है। चरमपंथ को बढ़ावा देने वाले इन आरोपों में कितना दम है, मैंने पूछा कतर में 12 साल रह चुके अल जजीरा के पूर्व पत्रकार और वर्तमान में हिंदुस्तान टाइम्स के नेशनल अफेयर एडिटर रुबिन बनर्जी से।
आरोप लगाना तो जो भी चाहे मन में चाहे आए बोले, बट कितना सही है गलत है हमको मालूम है। लाइक सऊदी अरेबिया से क्या क्या फंडिंग होता है, हमारा ये जो वहाबी इस्लाम जो है वो उसका तो बहुत सारा इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में हुआ है, वो लोग फंडिंग भी कर रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा जो कतर किसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग नहीं कर रहे, ये लोग के पास बहुत पैसा है और कोई, मगर ये भी बोलना जो कतर अलकायदा का है क्या, कतर तालिबान है, कतर आईएस को पैसा दे रहा है, मेरे को लगता है ये पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड है।
मध्य पूर्व एशिया में अरब क्रांति के दौरान कतर पर मिस्र के पूर्व इस्लामिक राष्ट्रपति का समर्थन करने का आरोप लगता रहा है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन का दर्जा देते हैं, लेकिन कतर ने इस संगठन के सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। कतर मिस्र के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का भी पुरजोर समर्थक है। मोहम्मद मुर्सी हिजबुल्ला के सदस्य थे जिसे कई अरब देश चरमपंथी संगठन मानते हैं। चरमपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगाकर जिस तरह से सऊदी और अन्य देशों ने कतर से राजनयिक संबंध तोड़े, इसकी तात्कालिक वजह क्या थी, चरमपंथ का मुद्दा या फिर कुछ और? पाकिस्तान के लाहौर में पत्रकार राशिद हुसैन इस्लामी दुनिया की राजनीति को समझते हैं।
देखिए फौरी वजह तो ये बनी है कि एक मैसेज कतरी बादशाह का सामने आता है जिसमें ये कह रहे होते हैं कि खित्ते की स्टेबिलिटी के लिए ईरान बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद ये होता है कि कतरी हुकूमत उससे किसी हद तक पीछे हटने की कोशिश करती है और ये कहती है कि ये मैसेज हैक हुआ है, ये उनकी ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। लेकिन उस पर इस पूरे खित्ते में दूसरे अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, बहरीन और फिर यमन की वो हुकूमत जो सऊदी अरब से बैठ के ऑपरेट कर रही है, उनका एक बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आता है। ये उसी मैसेज का जवाब है जिसको कतरी हुकूमत ये कहती रही है कि ये दरअसल उनकी ऑफिशियल पोजीशन नहीं बल्कि हैक मैसेज की कहानी है।
लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब कतर से इस्लामी दुनिया के देशों ने संपर्क तोड़े हो। 2014 के मार्च महीने में भी सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने कतर पर उनके आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए अपने राजदूत वापस बुलाए थे। तो इसका मतलब इसकी जड़ें लंबी और गहरी हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पश्चिम एशिया मामलों के प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा बताते हैं कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई।
जेनेसिस ईरानियन रेवोल्यूशन से लेके ईरान को रेजिम चेंज, ईरान इराक वार और दूसरे अन्य मेजर से सक्सेस नहीं हुए और सऊदी अरेबिया और जो खाड़ी के मोनार्किंग्स है वो परेशान है ईरान से। दोनों की कोल्ड वार जो है हॉट वार में बदल गई है कई क्षेत्रों में, बहरीन, इराक, सीरिया, यमन, लीबिया, हालांकि इजिप्ट में भी। तो बेसिकली ये अरब पर्शियन था, उसके बाद शिया सुन्नी हुआ और अब सऊदी अरेबिया ईरान हो गया है और कतर पहले से ही जो है ईरान के हक में है क्योंकि उसके गैस के भंडार जो है ईरान के गैस भंडारों से लिंक हुआ है।
जब कतर से 6 देशों ने राजनयिक संपर्क तोड़ लिए, जल थल और वायु मार्ग से संपर्क पर रोक लगाई, तो इस तरह की खबरें मीडिया में आई कि कतर के शहरों में रह रहे लोगों के बीच अफरा तफरी मची है। लोगों में घर का राशन और जरूरी सामान खरीदने की होड़ लगी हुई है। वहाँ क्या चल रहा है, मैंने बात की बिहार के किशनगंज से कतर की राजधानी दोहा पहुँचे पत्रकार शुएब अहमद से।
बिल्कुल सब नॉर्मल चल रहा है। हाँ ये है कि इनिशियली जब ये न्यूज चुका, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को सब चीजें पता चल जाती है, वायरल हो जाता है, तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया था बल्क में। जर्नलिस्ट या एज ए जैसे रेजिडेंट ऑफ कतर मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ, हम लोगों ने पिक्चर लेकर के आए, कल के और आज के पिक्चर्स हैं, जैसे कोई चीज खरीद के खत्म कर दिया लोगों ने, ले लिया बल्क में खरीद करके, वहाँ पे फिर रिफिल कर रहे हैं, जंगल की आग की तरह फैल जाती है बात।
अरब देशों ने ये फैसला ऐसे समय पर लिया है जब खाड़ी देशों और उसके पड़ोसी ईरान के बीच तनाव बढ़ा है। हालिया अरब यात्रा पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर चरमपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे। इस घटना को अमरीका के दोस्त कहे जाने वाले ताकतवर खाड़ी देशों के बीच एक बड़ी दरार की तरह देखा जा रहा है। राशिद हुसैन,
देखिए कतर इन मामलों से पहले भी गुजर चुका है, कतर इन पर डिपेंडेंट नहीं है और नहीं ये डिपेंडेंट है कतर के ऊपर, लेकिन जो बुनियादी बात है वो इन तमाम चीजों का वो निकल करके ये आ रहा है कि वो जो 54 ममालिक के इत्तेहाद को बनाने की कोशिश हो रही थी, उस इत्तेहाद के को बने हुए अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं, पहली दरार है उसमें, एंटी ईरान इत्तेहाद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो रहा है।
अब सवाल यह है कि इस्लामी देशों के राजनयिक संपर्क तोड़ने और तमाम प्रतिबंधों के बाद क्या वाकई कतर दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा? कतर के पास क्या विकल्प है? इस संकट का भविष्य क्या है? रुबिन बनर्जी,
थोड़ा बहुत बातचीत करके सुलझ जाएगा, क्यों ना, नहीं सुलझेगा तो प्रॉब्लम और बढ़ेगा। कतर ईरान के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लेगा तो सऊदी अरब के लिए, पूरा रीजन के लिए और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। कतर चाइना के साथ स्ट्रेटेजिकल अलायंस अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लेगा तो उसमें अमेरिका क्या साउथ अरेबिया का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये थोड़ा प्रेशर टैक्टिक्स चल रहे हैं और कुछ तो अंडरस्टैंडिंग निकल के आना ही चाहिए।
मोहनलाल शर्मा, बीबीसी।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं इंदु पांडे। आज ग्रुप बी के 8वें मैच में भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये खेला जाएगा कैनिंगटन ओवल लंदन में। भारत अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीत चुका है, तो वहीं श्रीलंका को पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। श्रीलंका के सामने सबसे बड़ी समस्या है इनके वाइस कैप्टन उपुल थरंगा का टीम से बाहर होना, लेकिन इनके लिए अच्छी खबर ये है कि श्रीलंकाई टीम में फिट हो चुके कैप्टन एंजेलो मैथ्यूज की वापसी होगी। पहली हार के बाद श्रीलंका के लिए मैच जीतना आज बहुत जरूरी होगा, तो वहीं भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में अपना टिकट पक्का कर लेगी। क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन से जब हमने पूछा कि आज का मैच अगर भारत के लिए देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण है।
देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली मैच जीत गई है इंडिया और अगर दूसरी मैच भी जीतती है तो फिर सेमीफाइनल में जगह पक्की हो जाती है और अच्छा मौका है इंडिया को क्योंकि यहाँ पर उनका मुकाबला है श्रीलंका से जो खुद मैं कहूँगा कि रीबिल्डिंग प्रोसेस से गुजर रही है। इतने बड़े खिलाड़ी है नहीं उनके पास, लेकिन इसका एक और भी एक पहलू हो सकता है क्योंकि बड़े खिलाड़ी नहीं है तो बेझिझक खेल सकते हैं वो, और यहीं पर कुछ ना कुछ भारत को संभल के रखना पड़ेगा अपने आप को क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस से खेले तो उसका भारी भरकम प्राइस भी भरना पड़ता है कभी कभी।
और अब बात करते हैं टेनिस की। स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में कदम रख लिया है। चौथी विश्व वरीयता प्राप्त नडाल का मुकाबला पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में अपने ही देश के पैब्लो कोरिना बूस्टा से था। बूस्टा के मैच से हटने की वजह से नडाल को फाइनल में जगह मिल गई। खिताब बचाने के लिए उतरे नोवाक जोकोविच का फिर से फ्रेंच ओपन खिताब जीतने का सपना टूट गया। जोकोविच को डोमिनिक थीम ने सीधे सेटों में मात दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थीम ने जोकोविच को 7-6, 6-3, 6-0 से मात दी है। खेल समाचारों में बस इतना ही।
और इसके साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन मुख्य समाचार एक बार फिर सुनेंगे।
बीबीसी समाचार। ब्रिटेन में आज आम चुनावों में लाखों लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने तेहरान में बुधवार को हुए चरमपंथी हमले का आरोप सऊदी अरब और अमेरिका पर लगाया है। सऊदी अरब ने आरोपों से इनकार किया है। अंडमान सागर में अपना सैन्य विमान गुमशुदा होने पर म्यांमार ने बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। खबरें हैं कि उसमें 122 लोग सवार थे, इनमें ज़्यादातर लोग सैनिक और उनके परिवार के थे। कतर संकट के बीच अमरीकी राष्ट्रपति ने कतर के अमीर से चरमपंथियों की फंडिंग रोकने के लिए क्षेत्र में सभी देशों के मिलकर काम करने की अहमियत पर बात की है। निष्कासित FBI निदेशक जेम्स कोमी ने पुष्टि की है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फिन के रूस संबंधों की जांच रोकने के लिए कहा था। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे कुलदीप मिश्र और इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला देवाशीष कुमार ने। नमस्कार भारत में आज इतना ही। हमारा अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।